أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظارہ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن نتائج مختلف اخذ کر لیے جاتے ہیں اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مختلف اخذ کردہ نتائج ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوتے ہیں اور اتنے متضاد کہ گویا ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت نہیں. اسی قسم کا واقعہ قرآن کریم کے متعلق ظہور میں آیا جب قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت, اس کی شعریت, اس کے نغماتی اثرات, اس کے توازن, اس کی فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو کر مختلف نتائج اخذ کیے گئے. ظاہر پرست ظاہر بین آنکھ نے جو تجزیہ نہیں کر سکتی, جو حکمت سے غور نہیں کرتی, اس نے ایک یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ تو شعر ہے. یہ نتیجہ اخذ کیا بل ہوا شاعر, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں. بہت گہرا اثر ہے ان کے کلام میں, بڑے نغماتی اثرات ہیں, فصاحت و بلاغت کا دریا بہ رہا ہے, یہ تو ہم مانتے ہیں. لیکن ندی ماننا یا یہ کہنا کہ خدا کا کلام ہے, یہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے. شعروں سے مشابہت ہے کلام کو اور شاعروں سے مشابہت ہے نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کو, جن کی بصیرت کچھ آگے بڑھی ایک انچ یا دو انچ. انہوں نے اس سے زیادہ یہ کہا کہ شاعر بھی ہیں لیکن اس کمال کے کہ سحر کی حد تک ان کے شعر میں اثر پیدا ہو چکا ہے. سحر مستمر, حیرت انگیز سحری اثرات ہیں اس کلام میں, اور ساحر ہے, جادوگر ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں مان سکتے. کیوں دھوکہ کھایا ان کی آنکھ نے, اور اس آنکھ نے جو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کی آنکھ تھی, اس نے کیوں مختلف نتیجہ اخذ کیا؟ اس لیے کہ وہ ظاہر پرستوں کی آنکھیں نہیں تھیں, وہ غور کرنے والوں کی آنکھیں تھیں, فکر کرنے والوں کی آنکھیں تھیں, وہ ظاہری منظر کو دیکھ کر اس کے پس منظر میں ڈوبنے والی آنکھیں تھیں, اور غور کے بعد نتیجہ اخذ کرنے والی آنکھیں تھیں. وہ اس راز کو پا گئیں کہ اگرچہ شعری لحاظ سے بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں نظر آتا سوائے ادنا اور اعلیٰ کے, بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ کلام ہے تو شعر, लेकिन इतने आला मेयार का शेर है जो शहर की हद में दाखिल हो गया, जादूगरी के तक पहुंच गया। लेकिन ये दुरुस्त नहीं, इसलिए कि शहर और शेर का रुख मुख्तलिफ होता है और नबूवत का रुख मुख्तलिफ होता है। नबूवत की के तसव्वुरात और अफकार की रौ बिल्कुल मुखालिफ सिमत में बह रही होती है और शेर और जादूगरी की रुख की रौ बिल्कुल मुखालिफ सिमत में बह रही होती है, उनका आपस में कोई जोड़ ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं। दुनिया का शेर और अदब का जितना भी मजमुआ है उसमें हमेशा आप रुख मादियत की तरफ देखेंगे, दुनियावी लज्जात की तरफ उसका रुख पाएंगे। आला हवाले से भी बात होगी तो बिलाखिर तान वहीं जाकर टूटेगी कि इंसानी लज्जतों का मा हासिल क्या है और जाहरी तस्कीन कैसे होती है। लेकिन नबूवत के कलाम में एक बिल्कुल मुख्तलिफ रौ पाई जाती है, वो अदना रोजमर्रा की बातें भी शुरू करती है तो तान आखिर तकवा पर और अल्लाह के जिक्र पर टूटती है। वहां अल्लाह के हवाले से भी बाज़ दफा बात की जाए तो तान दुनिया पर जाके टूटती है, शेर और शराब और कबाब पर जाके बात खत्म होती है। यहां अदना अदना रोजमर्रा की बातें की जाए तो तान जाकर तकवा पर टूटती है और फिर ऐसी तकवा पर जाकर टूटती नहीं बल्कि तकवा की तान में तब्दील हो जाती है जो फिर कभी नहीं टूटती। वो ऐसी तान है जिसको अब्दियत हासिल है। इस फर्क की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। एक शायर कहता है, हर चंद हो मुशाहदे हकी गुफ्तगू, बनती नहीं है बादा सागर कहे बगैर। यानी अल्लाह का जिक्र भी हो तो हमारा जहन जो बादा मस्त है आखिर पहुंच जाता है बादा और शराब की तरफ और उसके हवाले के बगैर हम बातें नहीं कर सकते। जिक्र इलाही भी हो तो शराब पर जाकर तान टूट रही है। और उसके बरक्स कुरान करीम का असलूब यह है कि अदना रोजमर्रा की बातें पकड़ता है और अल्लाह ताला पर जाकर मज़मून को खत्म करता है। अब लिबास ही को ले लीजिए, दुनिया में ये जो लिबास का जिक्र है ये शेर व अदब में भी मिलता है और मजाहिब में भी मिलता है। और कुरान करीम ने लिबास का जो मज़मून बांधा है वो ना सिर्फ ये कि दुनिया के शेरों के कलाम में नहीं मिलता बल्कि दुनिया के किसी मजहब में ये नजर नहीं आता। मैं इल्म की बिना पर यह बात कर रहा हूं, वो मेरा इल्म हावी नहीं महदूद है, लेकिन जितना भी इंसानी इल्म को दस्तरस हो सकती है मैंने गौर किया मौजना मजाहिब के दौरान कि इस मजमून की आयत बल्कि ऐसी बेशुमार और आयत हैं जिनके मजमून की आयत को किसी इलाही किताब ने छुआ तक नहीं। बाइबल में लिबास का जिक्र मिलता है, इस तरह अंबिया थे, फखराना लिबास थे, ये हुआ वो हुआ, फलां बादशाह ने ये पहना हुआ था, सिल्क मरवारीद की बातें हैं, अतलस व कमखाब के किस्से हैं, मगर कुरान करीम लिबास के मजमून को पकड़ता है और एकदम उछाल कर उसको खुदा तक पहुंचा देता है। बीच में कोई दरमियानी दौर ही नहीं आता। वह लिबास तकवा जालिक खैर, हैरत अंगेज कलाम है, लिबास तकवा जालिक खैर। कहीं बात करता है लिबास की एक दूसरे इबरत के रंग में तो कहता है लिबास उलजू, भूख का लिबास। यानी जाहिरी लिबास नजर से गायब हो जाते हैं और मजामीन उसकी जगह ले लेते हैं। लिबास की अदना हालत का भी जिक्र करता है जो लिबास उलजू पे जाके मुंतज होती है और उसकी आला हालत का भी जिक्र करता है जो लिबास उत्तकवा पे जाके मुंतज होती है। इस मजमून पर मैंने कुछ मुख्तसर बात की थी ईद के खुतबे में, लेकिन ये बहुत वसी मजमून है। लिबास तकवा के माने क्या हैं, इसका जो असल रूहानी मकसद है इस आयत का वो एक बहुत वसी मजमून है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जाहिरी लिबास से भी लिबास तकवा का एक ताल्लुक है और वो ताल्लुक फौरन तो इंसान को समझ नहीं आता। अगर इंसान गौर व फिक्र करता रहे तो उसकी जिंदगी पे फैले हुए वाकयात जो हैं उनको मुश्तमे करे, गौर करे, डूबे उनकी यादों में तो उसके सामने ये मजमून उभर जाएगा कि आम लिबास में भी इंसान रोजमर्रा آزمایا جاتا ہے تقویٰ کے بارے میں, اور مختلف حالتوں میں تقویٰ کا مضمون بھی بدلتا رہتا ہے. کبھی یہ دین کی طرف لے جاتا ہے, کبھی اہم کاموں کی طرف لے جاتا ہے, کبھی اعلیٰ مقاصد کی طرف لے جاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ مشترک ہو جاتا ہے سب قوموں میں. اور بحثیت انسان تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو اور معنی بن جاتے ہیں. کبھی یہ الہی رنگ پکڑتا ہے تو تقویٰ کا مضمون اور ہی شان میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن صرف ظاہری لباس کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو بڑا پیارا مضمون بنتا ہے, بڑا گہرا اور تفصیلی ہے, جس کا دائرہ ساری زندگی پہ محیط ہے. اس ضمن میں میں اپنے بچپن کے تجارب سے ان کے حوالے سے بات کروں گا. ایک ایک واقعہ چھوٹا چھوٹا چنا ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ بیدار فکر کے ساتھ غور کریں تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ نصیحت آپ کو ملتی چلی جائے گی. باتیں ادنا سی چھوٹی چھوٹی ہیں بالکل, لیکن ان کے اندر سبق گہرے ہیں, اور سب میں تقویٰ کا سبق مل رہا ہے. بچپن کی بات ہے, ہمارے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رواج یہ تھا, گھر میں دستور تھا کہ بہت سادہ زندگی تھی, بہت تھوڑا دیتے تھے بیوی بچوں کو اور توجہ زیادہ دلاتے تھے چندوں کی طرف. سادہ, بالکل اتنی سادہ زندگی کہ کپڑے بعض دفعہ سی سی کے بھی اس قابل نہیں ہوتے تھے کہ پہن کے انسان سکول جائے. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ شلوار تھی, قمیض نہیں تھی, اور سکول جانا تھا. اور میرے بہن بھائی اب تک یاد کر کے بہت ہنستے ہیں اس بات لطیفے پر کہ میں نے اس خیال سے کہ سکول مس نہ ہو اچکن خالی بدن پہ پہن لی, یعنی شلوار اور اچکن. اب میری آزمائش مقدر تھی, وہاں جب گیا تو پی ٹی کی گھنٹی آئی, اور استاد نے جب مجھے اچکن میں دوڑتے دیکھا تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے, اس کو ذرا بلاؤ, ادھر نکالو باہر. اس نے کہا اچکن اتارو اور پی ٹی کرو. اچکن کون سا لباس ہے پی ٹی کا؟ میں نے کہا نہیں, آپ کی بات سر آنکھوں پر, لیکن اچکن اتار کے میں نے نہیں پی ٹی کر لی. تھوڑی سی ذرا چھینا چھپٹی ہوئی, انہوں نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا. میں نے ان کی خوش آمد کی کہ چھوڑ دیں اس بات کو, لیکن بٹن دو کھولے ان کو سمجھ آ گئی بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو. تو مجھے یہ خیال آیا کہ اعلیٰ مقاصد کے رستے میں لباس حائل نہیں ہونا چاہیے. جو لباس اعلیٰ مقاصد کے رستے میں حائل ہو جاتا ہے وہ تقویٰ کے خلاف ہے. اور اس ضمن میں مجھے اس لحاظ سے صرف لطف آیا کہ ایک موقع پر خدا نے مجھے کامیاب بھی کر دیا. پھر خیال آیا کہ ناکامیوں کے بھی تو بہت سے مواقع ہیں. ان کی طرف دھیان گیا تو کالج کے زمانے کی بہت سی باتیں یاد آئیں. بعض دفعہ وہ حضرت مسلم معود کا ذکر میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں محبت کے انداز میں, تاکہ حضور کی طرف دعاؤں کے لیے توجہ پیدا ہو. بظاہر مضمون سے انحراف ہے, لیکن پھر واپس میں اسی طرف آ جاؤں گا. حضرت صاحب سادگی کا معیار تو رکھتے تھے, لیکن مہمان نوازی کے بہت اعلیٰ معیار کے قائل تھے. ہماری والدہ بھی مہمان نواز تھیں, لیکن ایک فطری رنگ میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی براہ راست تربیت تو ان کو حاصل نہیں تھی نا, لیکن حضرت مسلم معود کو ایسی گہری تربیت حاصل تھی اصولوں کی کہ آپ کی مہمان نوازی کا معیار بہت بلند تھا. چنانچہ بارہا میری موجودگی میں ایسے واقعات ہوئے کہ آپ نے سبق دیے میری والدہ کو کہ یہ مہمان نوازی کا یہ بھی تقاضا ہوتا ہے, یہ بھی تقاضا ہوتا ہے. چنانچہ وہ کوشش کرتی تھی اس رنگ میں رنگین ہو جائیں. عورتوں کو یادیں ہیں, بہت لوگوں کو یادیں ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ میری والدہ مہمان نواز تھی. یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے ہاتھ کون سا کام کر رہا تھا, کون سیکل کر رہا تھا ان چیزوں کو. ایک دفعہ کی بات ہے, حضرت صاحب تشریف لائے اور کہا کہ فلاں چیز دی تھی میں نے, وہ ہے, مہمان آ گئے ہیں. امی نے کہا کہ نہیں وہ تو ختم ہو گئی, کچھ لاؤ, مہمان آئے ہوں گے. انہوں نے کہا اس پر تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا پھر ایک بات آئندہ سے یاد رکھنا کہ جن گھروں میں اچانک آنا جانا ہو वहां मेहमान नवाजी का तकाजा यह है कि हमेशा कुछ पसंदाज करके रखा जाए अचानक वक्त के लिए, चाहे दाल रोटी हो चाहे चने हो, लेकिन ऐसा वक्त उस घर पर नहीं आना चाहिए कि कुछ भी ना हो, वरना फिर इंसान मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे नहीं कर सकता। क्योंकि ये तरबियत का रंग था, इसलिए अल्लाह ताला ने सारे बच्चों में हज़रत मुस्लिम माऊद के फजा के फजल से हमारी बहनों में भी भाइयों में भी अपने अपनी तौफीक के मुताबिक मेहमान नवाजी का जज्बा पैदा किया, और ये देख के खुशी होती है कि हर एक में ये मादा मौजूद है। अब इस मादे का टकराव बाज दफा इक्तसादी हालात से हो जाता है। जब हम कॉलेज में थे तो इतना सा वजीफा मिलता था कि या मेहमान नवाजी करें या कपड़े पहने, दो चीजें इकट्ठी तो नहीं चल सकती थी। चुनाचे आदतन फितरतन तरबियत का असर था कि दोस्तों मेहमान जो हमारे कॉलेज में आने जाने वाले थे उनके साथ एक मेहमान नवाजी का निजाम चल रहा था। अक्सर मेरा पैसा तो टक शॉप चला जाता था, और पहनने के लिए बाज दफा कपड़े नहीं होते थे, शलवारें सीते थे तो आहिस्ता आहिस्ता वो पत्ता बन जाती थी धुल धुल के, और सीवन से फटने लगती थी। तो कई कॉलेज की मैंने क्लासें मिस की इस वजह से। अब मैंने बाद में सोचा तो मैं नाकाम हो गया। बचपन में एक मौके पर कामयाब हुआ, जवानी में तरक्की करनी चाहिए थी, मगर मैं नाकाम हो गया। लिबास को हायल नहीं होना चाहिए था मेरी तालीम की राह में। और ये एहसास, एहसास कमतरी तो है, ये हिकमत का एहसास नहीं है कि एक बच्चा या बड़ा जो भी हो वो लिबास की वजह से आला मकसद के हसूल से नाकाम रह जाए, के हसूल में नाकाम रह जाए। बेनियाज होना चाहिए, ऐसी बुलंद निगाहें होनी चाहिए कि बिल्कुल परवाही ना हो। वो निगाहें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई थी, जिनकी खातिर कायनात पैदा की गई। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि बसा औकात खुद बैठकर वो सुई धागा लेकर वो कपड़े सी रहे होते थे, और बाज दफा पैबंद पर पैबंद लग रहे होते थे, और फिर पैबंद पर पैबंद के ऊपर भी फिर पैबंद लग रहा होता था। अजीम रसूल था, हैरत अंगेज, बाला था इन चीजों से, बेनियाज था। अच्छे कपड़े आए वो भी पहने, झूठा फकर नहीं था, ना झूठा फकर था ना झूठा फकर था, दोनों से बेनियाज रसूल। अच्छे कपड़े आए, बड़े खूबसूरत जुब्बे आए बाहर से, ये नहीं सोचा कि मैं पहनूंगा तो लोग कहेंगे ओहो ये तो दुनिया की चीजें पहन रहा है। जानते थे कि अल्लाह ने ये जीनतें मोमिनों के लिए पैदा की हैं। सिर्फ तकवा साथ रहना चाहिए। अगर तकवा का लिबास दुनियावी लिबास के साथ हम महांग हो जाए तो फिर वो इलाही रंग पकड़ता है, वरना नहीं पकड़ता। अदना लिबास भी तकबर का मूजिब बन जाता है अगर इस खौफ से पहने कि अगर मैंने आला पहना तो लोग क्या कहेंगे कि अच्छा ये दुनियादार है। चीथड़े पहने हुए जलील हो जाते हैं, वो हकीकत में इंसान को हलाकत की तरफ ले जाते हैं। अगर ये जज्बा पैदा हो जाए कि मैं चीथड़ों में बड़ा बुजुर्ग लगूंगा, मैं कम खाऊंगा तो बड़ा अच्छा लगूंगा, लोग कहेंगे बड़ा सूफी है बड़ा नेक है, तो उसने तो उसको तो चीथड़ों ने हलाक कर दिया। और अगर कोई अच्छा लिबास पहनकर फखर से फिर रहा है दुनिया के सामने, फखर के मुकाबले पर इस आजमाइश में मुब्तला हो गया, और अपने गरीब भाइयों पर सिर्फ इसलिए निगाह तकबर की डाल रहा है कि उनके पास थोड़ा लिबास है, मेरे छोटे दर्जे का लिबास है, मेरे पास अच्छे दर्जे का लिबास, वो भी मारा गया। तो लिबासु तकवा रंग बदलता रहता है, कहीं ये गुर्बत में आजमाइश के लिए आ जाता है आपके पास, कहीं अमारत में आजमाइश के लिए आ जाता है, और हर रंग में मोमिन के लिए इम्तिहान ही इम्तिहान। इस मजमून पर गौर करते हुए अब मैं एक और तरफ आपको ले जाता हूं, वो भी अपने याद के साथ वाबस्ता किस्सा है, उसी के हवाले से मैं चंद बातें आपसे अर्ज करता चला जाऊंगा। जब मैं इंग्लिस्तान गया तो वहां मैंने अंग्रेजी लिबास पहना, आम सादा लिबास जो था हमारा पाकिस्तानी वो वहां मेरे नजदीक चल ही नहीं सकता था, बड़ी मुसीबत है संभालना। अब कौन शलवारों को माया दे और स्त्रियां करे, और महंगा भी बड़ा पड़ता था, और मैंने कोई बात नहीं की इसमें। मैं समझता था उसको पहन के लोग मुझे गुनाहगार समझते हैं, समझते नहीं क्या फर्क पड़ता है। मैंने पहना, जब वापस आया तो किसी ने ये कान में बात फूंकी कि अब तुम पाकिस्तान जा रहे हो और अब पहुंचोगे वहां, इस्तकबाल होंगे, ये होगा वो होगा, अब तुम शलवार कमीज पहन लो और अचकन पहन लो। मैंने कहा अब तो नहीं मैं पहनूंगा, अगर ये लिबास मेरे लिए गुनाहगारी का लिबास था तो इस गुनाहगारी का इल्म होना चाहिए फिर सारों को। ये तो अजीब बात है कि बॉर्डर बदलने से लिबास बदल जाए, यहां बुर्का पहना हो और जब यूरोप के सफर पर औरत जाए तो बुर्का यहां छोड़ जाए कि बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, या अचकन बॉर्डर वहां क्रॉस ना कर सके और पतलून वहां से इधर बॉर्डर क्रॉस ना कर सके, ये तमस्कर हो गया, दीन तो ना हुआ। चुनाचे जब मुझे बहुत लुत्फ आया इस बात का आगे चलकर, जब मैं रबा स्टेशन पे पहुंचा तो खुदामुल अहमदी ने बड़ा इस्तकबाल किया हुआ था, मैं कायद जो रहा हूं वहां काफी देर, और मैंने देखा नजरें बदल रही, बड़ा धक्का लगा बाल लोगों को। उनका इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, भेजा क्या था, वापस क्या बन के आया है, मारे गए हम। बास पछताते हुए वापस चले गए कि इस्तकबाल की हमने खाम का तकलीफ की, ये तो चीज ही और बन गया है। अच्छा भला सलवार कमीज भी फटी ही पहन के फिरा करता था और अब पतलून डांटी हुई है, कोट पहना हुआ, टाई लगाई हुई, तो बड़े चेहरे मायूस हुए और मुझे बड़ा लुत्फ आया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला ने मुझे एक झूठी इज्जत से बचा लिया जिसकी मुझे कोई तमन्ना कोई ख्वाहिश नहीं, उसका एहसान है। अगर मुब्तला कर देता तो मारा भी जाता मैं। फिर आगे मुझे ख्याल है इससे सबक जो मिला, एक दफा सिंध का दौरा था, वक्फे जदीद में हुजूर ने आते ही मुझे लगा दिया। सिंध के दौरे पर जब गया तो एक बड़ी बैकवर्ड दुनिया के लिहाज से जमात और कुछ मौलवियत का असर, वैसे तो मैं आम लिबास भी पहनने लग गया था, जो मर्जी करता था, मुझे उसमें कभी फर्क नहीं किया, क्योंकि मेरे नजदीक पतलून हो, कोट हो, कोई फरगल पहना हो, किसी ने इंडोनेशिया की धोती पहनी हो, ये सारी बेमानी बातें हैं। बामाना बात सिर्फ एक है कि हर लिबास के साथ तकवा रहना चाहिए। चुनांचे वहां मैंने जानकर फिर अमदन उनको जरा छेड़ने के लिए अपना बेहतरीन सूट निकाला और टाई पहनी और वहां उनके पास पहुंचा, तो मुझे आज तक शौक याद है जो धक्के लगे उनकी नजरों को, बात तो अस्तगफार करते हुए वहां से निकल गए वापस कि ये वाकया क्या हो गया। और रफ्ता रफ्ता फिर समझाया गया मुख्तलिफ रंग में, आहिस्ता आहिस्ता आदतें पड़ी, कुछ हौसले वसी हुए, लेकिन ये नतीजा इसका क्या निकलता है? नतीजा ये नहीं निकलता कि आप मुझ पर रहम करें कि जी ओहो मैं बचपन में तो इस तरह रहा करता था, मुझे कपड़ों के तोहफे दें, ये नतीजा बिल्कुल नहीं निकलता। अगर कोई ये नतीजा निकालता तो बड़ी बेवकूफी करता है, कोई तोहफा नहीं आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये नतीजा निकलता है कि जब आप मस्जिदों में जाएं, अपने गरीब भाइयों को देखें, जाहिरी लिबास से भी आ रही जो उनके लिए काफी ना हो, तो उनकी हमदर्दी करें, उनको लिबास पहने, क्योंकि हर लिबास के बदले आपको तकवा का लिबास मिल रहा होगा, आपको अल्लाह की मोहब्बत का लिबास मिल रहा होगा। तो वो लिबास एक ऐसा लिबास है जो मादी लिबास से मुस्तगनी भी है और उसके साथ ताल्लुक भी जोड़ लिया करता है कभी कभी। खुदा की रजा की खातिर अपने गरीब भाइयों की खिदमत करें, ईदों पर उनको अच्छे कपड़े पहनाएं, उनकी सर्दियों के कपड़ों का इंतजाम करें, यह नतीजा निकलता है। दूसरा यह भी नतीजा नहीं निकलता कि जो शख्स बजाहिर लिबास से मुस्तगनी है वही नेक है, यह भी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अंदर तकवा का लिबास जाहिरी नहीं, वो अंदर घुसा हुआ है। ये अजीबोगरीब बात, तकवा का चूंकि रूह से ताल्लुक है इसलिए लिबास नाम होने के बावजूद ये नजर नहीं आता, ये रूह के गिर लिपटी हुई चीज है कोई जो बातिन में है। इसलिए अगर आपने जाहिरी लिबास पर बिना की तो यहां भी आप धोखा खा जाएंगे। हजार दफा सूफी मनुष्य बुजुर्ग नजर आने वाले लोग खुदा की नजर में हो सकता है मुत्तकी ना हो, हजार दफा ऐसा भी होगा कि बजाहिर लिबास बड़े फाखराना हैं, दुनियादारी के नजर आते हैं, अच्छे कपड़े कीमती कपड़े पहने हुए हैं, और फिल हकीकत उनके अंदर तकवा मौजूद है। ایسا ہی واقعہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہوا. کتنا بڑا مقام ہے آپ کی ولایت کا, اتنا عظیم الشان مقام کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی اور بڑی محبت کا اظہار فرمایا. اور ان کے متعلق آتا ہے کہ بڑا فاخرانہ لباس پہنا کرتے تھے, یعنی دنیا جس کو فاخرانہ سمجھتی, بڑے قیمتی قیمتی جوڑے, بہت اعلیٰ قسم کے سجے ہوئے اور اوپر سجاوٹیں ہیں دنیا کی جو کی ہوتی ہیں, ہاتھ کی زینتیں وہ سب سجی لگائی ہوئی ہوتی تھیں اس کے اوپر. تو کسی مرید نے اپنی لاعلمی میں یہ سوال کر دیا کہ حضرت آپ اتنے بزرگ ہو کے لباس کیوں اچھا پہنتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا کیا تم نے پوچھ لیا, بدزنی نہیں کی, میں خدا کی قسم کوئی جوڑا نہیں پہنتا جب تک میرا خدا مجھے نہیں کہتا کہ عبد القادر اٹھو اور یہ کپڑے پہن, میں بے نیاز ہوں ان کپڑوں سے. میرے مولا کی یہ بھی نظر ہے دنیا کو سبق دینے کی کہ زینتیں جو ہیں, من کل من حرم و زینت اللہ التی اخراج عبادہ من الطیبات و من الرزق قل ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ. ایک یہ بھی سبق ہے, کون ہے جس نے خدا کے بندوں پر زینتوں کو حرام کر دیا؟ کہہ دے یہ تو مومنوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں خاص ان کے لیے ہو جائیں گے, دنیا میں اور بھی شریک ہیں. بس جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان تھی, کبھی نہایت ہی پیارا قیمتی لباس بھی آپ نے پہنا جب باہر سے تحفے آئے, اور سادہ کپڑوں میں بھی پہنا پھرے, نہ اس پر شرمندگی کا احساس ہوا نہ اس پر فخر کا, بالا ہو گئے مستغنی ہو گئے. تو تقویٰ کا ایک یہ سبق ہمیں ملا کہ انسان حسب ضرورت اچھا بھی پہن سکتا ہے برا بھی پہن سکتا ہے. اس کے نتیجے میں ہم اگر یہ فیصلے کریں گے کہ فلاں متقی ہے اور فلاں غیر متقی, تو بالکل جھوٹ بول رہے ہوں گے, احمقانہ بات ہوگی, وہاں دخل دیں گے جہاں ہمارا دخل دینے کا کام کوئی نہیں, ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں, ہمیں علم ہی کوئی نہیں, تو لباسوں پہ سے کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ وہی مضمون ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آخر توجہ دلائی کہ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. ہم تقویٰ تقویٰ تو کہتے رہتے ہیں بار بار, تم کہیں اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ فیصلہ تم سے ہم لیں گے کون متقی بندہ اور کون غیر متقی. یہ اللہ ہی صرف جانتا ہے, هو عالم, وہی بہتر جانتا ہے من اتقا کہ تم میں سے متقی کون ہے, کیونکہ تقویٰ کا لباس آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا, وہ ایک روحانی مسئلہ ہے جس کو خدا کی آنکھ صرف دیکھتی ہے. پس اس پہلو سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ لباس کو دیکھ کر ہم فیصلوں میں جلدی نہ کیا کریں, محض لباس کو دیکھ کر اگر فیصلے کریں گے تو بسا اوقات ٹھوکر کھائیں گے, اور بعض دفعہ ٹھوکر نہیں بھی کھائیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے, کیونکہ خدا نے ہمیں مقرر نہیں فرمایا اس کام کے لیے. لباس اور تقویٰ کا ایک اور بھی تعلق ہے, اسی سے سبق ملتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے, کہ لباس انسان کا غلام بنا رہتا ہے اور بحیثیت غلام استعمال ہونا چاہیے, انسان کا آقا نہیں بننا چاہیے. اور یہ جو مسلک تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, یہ بھی قرآن پر مبنی ہے. قرآن کریم کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارا غلام بنایا, اے بنی نوع انسان تمہارا نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے, اگر تم اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ یا اپنے اوپر حاوی اس کو کر لو تو یہ شرک ہی شرک ہے. اپنے نوکر کی عبادت کرو گے, اپنے نوکر کے غلام بن جاؤ گے, تم کتنی حماقت ہے, کتنی بیوقوفی ہے, گھاٹے کا سودا ہے سارے کے ساتھ. اس کی عبادت کرو, اس کے غلام بنو جس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو بطور غلام, بطور ایک نوکر, ایک چاکر کے طور پر مسخر کیا ہوا ہے. تو ہمیشہ جب ایسا لباس کو انسان پہنے جس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا ہو کہ وہ لباس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے, تو وہاں طبیعت میں ایک انقباس پیدا ہو جاتا ہے, طبیعت مقدر ہو جاتی ہے, رحم آتا ہے. یہ تو نہیں آدمی فیصلہ دے سکتا کیونکہ اس کا مقام نہیں ہے کہ یہ غیر متقی ہے, ہو سکتا ہے کچھ اور بات ہو, لیکن وہ شخص خود ضرور جان سکتا ہے جس کی یہ کیفیت ہو. इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप दूसरों के लिबास देखकर ये फैसला किया करें कि वो लिबास का आका है या लिबास उसका आका है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने लिबास के बारे में हमेशा ये फैसला रखा करें और बड़ी बारीक नजर से मुतालिया किया करें अपने नफ्सियाती पस मंजर का कि आया आप लिबास के गुलाम बन रहे हैं या लिबास आपका गुलाम बन रहा है। आप वो हैंगर हैं जिसके ऊपर मॉडल के तौर पर लिबास लटकाए जाते हैं या वो इंसान हैं जिनकी जीनत की खातिर वो लिबास बनाए जाते हैं। अगर ये अपना जाविया निगाह दुरुस्त कर लें तो आपका जाहिरी लिबास भी मुत्तकियाना हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। इन सब बातों को मलहूज रखने के बाद फिर अगला कदम आता है, यानी तकवा के लिबास की हकीकत क्या है। तकवा के लिबास इंसान की हर खामी को ढांप लेता है और तकवा के मुताबिक ही इंसान को जीनत मिलती है। तकवा का लिबास ना हो तो जहां जहां से यह लिबास नहीं होगा वहां वहां से बदन नंगा हो जाएगा, वो धूप का भी शिकार होगा रूहानी लिहाज से और सर्दी का भी शिकार होगा और खुदा और खुदा वालों की नजर में वो चीथड़ों में मलबूस एक शख्स फिर रहा होगा। जितना ये लिबास कामिल होता जाए बदन रूहानी बदन ढकता चला जाता है और जीनत अता होती चली जाती है। चुनांचे कुरान करीम ने फरमाया खुजू ज़ीनतकुम मिंदा कुल्ले मस्जिदिन कि देखो जब मस्जिदों में जाया करो तो अपनी जीनत साथ लेके जाया करो। क्या जीनत से मुराद है? दुनिया की जीनत नहीं, वो एक सानवी माने हैं इसके। तकवा का लिबास पहन के जाया करो, महज लिल्ला सफर किया करो मस्जिद की तरफ, हर कदम पर दुआएं करते हुए जाओ, तौफीक मांगते हुए जाओ कि खुदा ताला मस्जिद से तुम्हें नेकी अता करे, रियाकारी से बचाए। तो मुझे ख्याल आया कि सारी दुनिया के अहमदियों को बताने की जरूरत है, याद दहाने की जरूरत है कि जाहिरी तौर पर तो वहां मुख्तलिफ भेसों में लोग आएंगे, भांत भांत की बोलियां बोलने वाले, भांत भांत के लिबास में मलबूस। कोई इंडोनेशिया से आ रहा होगा, कोई अमेरिका से आ रहा होगा, कोई पाकिस्तान से आ रहा होगा, किसी ने पगड़ी पहनी होगी, किसी ने टोपी, किसी ने हैट। और जब वहां इकट्ठे होंगे तो आपको उस वक्त महसूस होगा कि लिबास में फख्र का कोई सवाल ही नहीं। फितरी तकाजे हैं मुख्तलिफ कौमों के, और ना वहां पगड़ी फखर का मुजिब रहेगी, ना टोपी जिल्लत का मुजिब, ना हैट किसी किस्म की अफजलियत का मुजिब बन रहेगा, फजीलत का मुजिब रहेगा, ना नंगे सिर होना ही कोई मायूब बात नजर आएगी। कौमें मुख्तलिफ रंग में, कोई अफ्रीकन लिबास पहन के आएगा, कोई अमरीकन, कोई इंडोनेशियन, कोई जापानी। क्या चीज है जो कदर मुश्तरक है जिसने अहमदी को एक रंग देना है? वो कतल लिबास तकवा है। इसलिए यूनिफॉर्म अपनी लेके जाना ना भूलें, क्योंकि यूनिफॉर्म के बगैर कौमें हसीन मंजर पेश नहीं किया करती। यूनिफॉर्म इज्तमाई जिंदगी का लाजमी हिस्सा है और खुदा ताला ने एक ऐसी यूनिफॉर्म आपको अता फरमा दी जो हर जाहिरी यूनिफॉर्म से आजाद हो चुकी है और वो तकवा का लिबास है। अहमदी अपने तकवा से पहचाना जाए, किसी रंग में मलबूस हो, कोई जुबान बोल रहा हो, देखने वाली निगाहें जान जाएं, मालूम कर लें कि ये मुत्तकी लोग फिर रहे हैं, ये हमसे मुख्तलिफ कौम है, ये खुदा के बंदे हैं, खुदा की तरफ से आए हैं, खुदा की खातिर आए हैं और खुदा की तरफ बुलाने आए हैं। ये वो अहम बात थी जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था। सोचा तो आहिस्ता आहिस्ता मज़मून फैलते फैलते कहीं से कहीं निकल गया। मैंने कहा चलें अपनी सोच में आपको भी शामिल कर लूं, ये जो सैर मैंने की है आपको भी उसमें हम सफर बना लूं, क्योंकि स्पेन का सफर भी हम में से बहुत से इकट्ठे करेंगे। तो इन बातों को मलहूज रखते हुए लिबास तकवा को पीछे ना छोड़ जाएं। दूसरी बात उन लोगों के मुतालिक मैं कहनी चाहता हूं जो पीछे रह जाएंगे, उनमें से बात बड़ा दुख महसूस कर रहे हैं, बड़े दर्दनाक खत आ रहे हैं मुझे, तड़प रहे हैं, काश हम भी वहां जा सकते और हम नहीं जा सकते, दुआओं के लिए लिख रहे हैं। उन सबसे मैं कहता हूं कि आप जमानो मकान से बाला हो चुके हैं, जिसका ताल्लुक रब से जुड़ जाए, जो जमानो मकान से बाला है उसके बंदे भी बसा औकात जमानो मकान से बाला हो जाएगा। ये वो मुकाम है, अगर तकवा का लिबास आप यहां पहन लें तो हो सकता है जिसम आपका शरीक ना हो, आपकी रूह वहां मस्जिद में शरीक हो रही हो खुदा के नजदीक। और ऐसे वाकयात हो चुके हैं तारीख इस्लाम में। ऐसे ऐसे अजीम शान वाकयात हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। और आप गवाह हैं सबसे ज्यादा इस बात के जो यहां इस वक्त अहमदी बैठे हुए हैं, और वो भी जो यहां नहीं बैठे हुए, कुरान करीम गवाह है कि आप गवाह हैं इस बात के। कुरान करीम फरमाता है लम्मा यलहकू बिहिम, ऐसे लोग आने वाले हैं कि जो जमानी लिहाज से भी नहीं मिले और मकानी लिहाज से भी नहीं मिले, मगर खुदा गवाही देता है कि मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा में उनका शुमार होगा। अब बताइए स्पेन तो फिर भी गिर पड़ के पहुंच जाएंगे, कोई वापस 1400 साल भी जा सकता है? उस मक्के में जा सकता है जहां मोहम्मद मुस्तफा फिरा करते थे और दुख उठाया करते थे अपने रब की खातिर? उस मक्के में जा सकता है जहां बिलाल घसीटे जाते थे गलियों में पथरीली जमीन पर? कोई नहीं जा सकता। उस मदीने की सैर नहीं हो सकती जो वो मदीना था। जाहिरी तौर पर ईंट पत्थर के उन शहरों की सैर तो हो सकती है, इसलिए नामुमकिन बात नजर आती है। मगर कुरान करीम फरमाता है कि वही खुदा है जो दोबारा फिर ऐसे वाकयात पैदा फरमा देगा कि आने वाली नस्लें जिनका जमानी लिहाज से भी बोध होगा और मकानी लिहाज से भी बोध होगा और कौमी लिहाज से भी बोध होगा और नस्ली लिहाज से भी बोध होगा। लम्मा यलकूब हिम, जब खुदा कहता है तो हर चीज कट गई, लेकिन एक चीज नहीं कटी उनकी, उनकी रूह के जज्बात इश्क जो मोहम्मद मुस्तफा से उनको हैं, वो जज्बात उनको ऐसे पर अता करेंगे जिनके नजदीक में मोहम्मद के जिनकी तुफैल वो मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में हाजिर हो जाएंगे। और खुदा आज गवाही दे रहा है कि ऐसी कौम आने वाली है, लम्मा यलकूबहिम, अभी तक तो नहीं आए लेकिन हो जाएंगे, मिल जाएंगे हुजूर अकरम के गुलामों के साथ। तो वो खुदा जो जमानो मकान से बाला खुदा है, जब उसकी तकदीर पर राजी हो जाता है इंसान, जब उसकी रजा के सामने सर तस्लीम खम कर देता है, तो उसको भी खुदा एक जमानो मकान से बाला कैफियत अता फरमाता है। दूर बैठे उसके हज हो जाते हैं, बगैर मिले सहाबी बन जाया करता है। उसको तौफीक नहीं मिली अगर हजूर अकरम की खिदमत में हाजिर होकर सलाम करने की, तो ऐसा भी होता है कि मोहम्मद मुस्तफा का सलाम उस तक पहुंच रहा होता है। यह है लिबास तकवा का नतीजा, अजीम शान नतायज अता होते हैं इस लिबास से। बस पीछे रहने वालों को गम क्या है, मुझे तो दुआ की तो उनके दर्द की वजह से तौफीक मिलती है, लेकिन ताज्जुब भी होता है कि वो किस बात पे रहे हैं। क्या पता ऐसे जाने वाले हों जिनको वहां की लज्जतें वहां की सैरें जख्मी कर दें, उनके जाने की नीयतें और हों, वापस फायदा उठाने की बजाय नुकसान उठाकर आ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, इब्तला भी तो वहां बढ़े। नीयतों में यह बात शामिल हो कि चलो स्पेन की मस्जिद तो है, सैर भी खूब होगी। अगर मकसद मस्जिद की सैर का मकसद बाला है तो ये चीजें तो मिल ही जाती हैं, उनसे इनकार नहीं है, सैर भी होती है मोमिन की। लेकिन मकसद अव्वल क्या है जो हावी है जिंदगी पर? बाज दफा इंसान को पता नहीं चलता, ठोकर खा जाता है, उसमें खलत मलत कर देता है दूसरे जज्बात को, और सारे का सारा रुझान तबाह हो जाता है। वो रुख सही नहीं रहता जिस रुख के ताबे इंसान किबले को पहुंचा करता है। तो इन लोगों के सामने भी तो बेचारों के सामने बड़े बड़े इब्तला हैं, जाने वालों के सामने। आपके सामने वो इब्तला तो नहीं, आपके भी लिए दर्द है और दर्द की दुआएं हैं, अगर खुदा उनको कबूल कर ले तो आप शामिल हो जाएंगे। वो वाकया आपने बारहा सुना है, तज़किरतुल औलिया में लिखा जाने वाला वाकया, जिसको हजरत मुस्लिम मौऊद ने भी बहरा बयान फरमाया, वो इसी मजमून की तशरीह करता है। कहते हैं एक दफा एक वली बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको हज की तौफीक मिली, रोया में देखा कि फरिश्ते बातें कर रहे हैं कि इस दफा किसी का आने वाले का तो हज हुआ नहीं, हां फलां शख्स का हुआ है जो नहीं आया, और उसके तुफैल खुदा ताला ने बाद आने वालों के हज भी कबूल कर ली। ये हैरत अंगेज वाकया जो सुना उन्होंने, तो उन्होंने उस फरिश्ते से पूछा कि तुम क्या किस्सा कर रहे हो, मेरा भी नहीं, उन्होंने कहा नहीं हुआ है लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं, एक ऐसा है हाजी खुदा की नजर में जो आया नहीं है और उसका हज इतना प्यारा लगता है अल्लाह ताला को कि उसके सदके उसने बहुत सारे दूसरे हाजियों के भी हज कबूल किए मगर जाती फैज नहीं है उनका ये। उसने कहा वो क्या कौन शख्स है, उसने कहा पता हम तुम्हें बता देते हैं, उससे आप ही जाके पूछ लो। चुनाचे रोया में ही उस शख्स का पता बताया गया, वो एक मोची था बसरा या कूफा या किसी शहर में बसने वाला, और वो उनको याद रहा पता, वो गए उस गांव शहर में वो मोहल्ले की तलाश की, उसके घर का दरवाजा खटखटाया और ज्यारत से अपनी आंखें सेर की और अर्ज किया कि ऐ खुदा के बंदे वो क्या बात है तुझमें जो खुदा को इतनी पसंद आई कि तेरा हज कबूल हो गया। उसकी हालत जार हो गई कि मैं तो ज्ञान जा नहीं सका, मेरा हज कैसे कबूल हो गया। उसने मुझे खुदा ने बताया है, मुझे तेरा पता खुदा ने बताया है, मुझे ये बात बता जो मुझे नहीं बताई गई कि ये क्या वाकया है। उसने कहा मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि बड़ा लंबा अरसा मैंने बच्चों के पेट काटे, खुद गुर्बत में गुजारा किया और हज के शौक में पैसे जमा किए और उसकी वजह से बाज दफा हफ्तों गोश्त नहीं पकता था घर में, हम उसी तरह गुजारा करते थे कि मेरा शौक पूरा हो जाए हज का। एक दिन हमसाये से खुशबू आई गोश्त की, गोश्त पकने की बड़ी अच्छी महक उठी और भूखे को तो और भी ये खुशबू अच्छी लगती है। मेरी बीवी ने कहा कि देखो मांगना बुरा है ठीक है लेकिन हमसायगी का भी तो हक है ना, अल्लाह ताला ने कायम फरमाया, तुम दरवाजा खटकाओ और उनको कहो कि मेरे बच्चे भी ऐसे हैं जो भूखे हैं, तुम उनके लिए थोड़ा सा गोश्त दे दो, इस लुत्फ में शरीक होंगे हम, खुदा तुम्हें जजा देगा। वो शख्स हमसाया बाहर निकला और जब उससे ये कहा गया तो उसने बड़ी लजाजत से कहा कि आप मुझसे ये काम ना करवाएं, कुछ ना पूछ, ये समझे कि शायद तक जान के अवॉइड करता है इस बात को, हटाना चाहता है, गोश्त से बचना चाहता है। उसने फिर कहा कि भाई अब मैं मांग बैठा हूं, मेरी इज्जत रख लो, दे दो मुझे कुछ, क्या हरज है। उसने कहा मेरे लिए हलाल है तुम्हारे लिए हराम है इसलिए नहीं दे रहा। देखिए ये कैसे हो सकता है एक मोमिन के लिए हलाल हो एक मोमिन के लिए हराम हो। उसने कहा हो क्यों नहीं सकता, कुरान कहता हो सकता, कुरान करीम में आता है कि जब भूख को की ये हालत पहुंच जाए कि फाके कर रहे हो तो सूअर भी हलाल है तुम्हारे लिए क्योंकि जिंदगी को फौकियत दी जाएगी खुदा की नजर में, उस वक्त हलाल और हराम के किसे उठ जाते हैं। तो मेरे और मुझे और मेरे बीवी बच्चों को इतने फाके थे कि वो वक्त आ गया था जब हराम और हलाल की कैद खुदा ने हमसे उठा दी। उस वक्त मैं बाहर निकला तो एक मरा हुआ गधा देखा, उसका गोश्त काटा है जो मैंने पकाया है। अब तुम कहते हो कि तुम हम दोनों के लिए किस तरह एक हुक्म नहीं है, अलग अलग हुक्म है हमारे। कहते मेरा दिल हिल गया, जलजला बर्पा हो गया मेरे दिल, उस मोची ने बताया। मैंने कहा खुदा मेरी सारी उम्र की मेहनतें रायगां गई जबकि मेरा हमसाया भूखे मर रहा था, उस हज का क्या फायदा, उस हज वो हज मेरे किस काम आएगा। अगर हमसाया गवाह हो जाएगा मुझ पर कि मैं इंसानियत के अदना मुकाम पर भी फायद नहीं। उसने जो पूंजी थी उठा के अपने हमसाया को दे दी और हज का इरादा तरक कर दिया। अब आलिमुल गैब खुदा है, जमानों से भी आजाद है, मकान से भी आजाद है। बैतुल्ला उसके घर पहुंच गया उस दिन जिस दिन उससे यह वाकया हुआ, खुदा वहां चला आया कि ऐ बंदे तेरी रूह मेरा तवाफ करती है, तू दुनिया की कैदों से आजाद है, मैं तेरा हज कबूल करता हूं, मैं लब्बैक कहता हूं तेरी आवाज के ऊपर। ये वाकयात भी दुनिया में हो जाया करते हैं। तो पीछे रहने वाले से मैं कहता हूं कि दुआएं करें और मौजें करें, बेनियाज हो जाए इन बातों से कि वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तकवा का लिबास ओढ़कर यही उस मस्जिद का तवाफ करें जिस मस्जिद के तवाफ के लिए कुछ लोगों को जिस्मानी तौर पर जाने की तौफीक मिले। दुआओं से मदद करें, एल स्पेन के लिए दुआ करें, इन मकासिद के आला होने के आला तार होने के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला हमारे साथ हो, हमें तौफीक अता फरमाए, जो जा सके हैं उनकी नेकी भी कबूल हो, जो नहीं जा सके उनकी भी कबूल हो जाए। खुदा की राह में यह मंजर हम देखें कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व आज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله جیسا کہ امیر صاحب نے اعلان فرمایا تھا جماعت کراچی کی طرف سے میرے بڑے بھائی مکرم محترم صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب نے مجھے توجہ دلائی کہ موقع ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو خواہش ہوگی کہ ہم بھی دستی بیعت کر لیں تو آپ جمعے کے بعد وقت دے دیں۔ میں نے ان سے جزاک اللہ کہا، آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی نیکی کی طرف، تو ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ وہ امیر صاحب سے جا کر بات کر لیں، چنانچہ اسی کے نتیجے میں ابھی امیر صاحب نے اعلان کیا ہے۔ تو بیعت کے وقت جیسا کہ بیان کیا گیا ہے صفوں میں ہی بیٹھے رہیں، زیادہ سے زیادہ ہاتھ رکھنے کے لیے اگر تھوڑا سا آگے سے رکھنا پڑے تو وہ تو مجبوری ہے، لیکن نظم و ضبط کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اسی طرح بیٹھے رہیں جس طرح ربوہ میں بیعت ہوئی تھی، ایک ادنا سی بھی بد نظمی نہیں ہوئی، پورے کے پورا مجمع باہر بھی اور اندر بھی اسی خاموشی سے بیٹھا رہا اور ہاتھ رکھ دیے ایک دوسرے کی پیٹھ پر، اور پھر یہاں جسمانی رابطے کے اظہار کے لیے، ورنہ اصل رابطہ تو قلب کا خدا سے ہوا کرتا ہے، اس میں جسمانی اظہار رابطے کی ضرورت نہیں، مگر یہ بھی سنت اولیاء اور سنت انبیاء ہے، اس لیے ہم اس سنت کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بچے بھی ہوتے ہیں، نئے نسل نئے آنے والے بھی ہیں، ان کو حکمت سمجھ آ جائے کہ ہم بدن کے واسطے پر اس لیے زور نہیں دے رہے کہ گویا بدن کے رستے سے خلوص بہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی، ہم انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ ظاہری رابطہ بھی قائم کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب بیعت لیا کرتے تھے تو یہ مناظر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جو نہیں پہنچ سکتے تھے وہ پگڑیاں کھول کر پھینک دیا کرتے تھے کہ پگڑی کے راستے سے تعلق قائم ہو جائے، تو اسی سنت کی پیروی میں ہم یوں کریں گے، ورنہ میرے جسم سے ذاتی رابطہ جو ظاہری ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ویسے سنت ابرار ہی ہے جو معنی پیدا کرتی ہے ان چیزوں میں، تو پھر ہم انشاءاللہ بیعت کریں گے اور نماز کے بعد، اور اس کے بعد دعا ہوگی پھر رخصت ہوگی۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله